हारून रशीद भी दीगर हुक्मरानों की तरह आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम को अपनी हुकूमत के लिए ख़तरा समझता था। इसके अलावा ऐसे लोग भी मौजूद थे कि जो इमाम से हसद करते और झूठी खबरें हुकूमत को देकर इमाम के ख़िलाफ़ हुकूमत को मुश्तैल करते थे। बनी अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल से थे, यानी नबी के चचा की औलाद थे। इस नस्बत का वो गलत फ़ायदा उठाते और ख़ुद को खिलाफत का असल हकदार करार देते, जबकि माशरे में अलवियों की अहमियत ज़्यादा थी और अलवियों के असर नफूस की अहम वजह ये थी कि लोग उन्हें औलाद रसूल की हैसियत से देखते थे। और ये वो बात है जिसे खुद इमाम ने भी बारहा बयान किया है, और उसके मुकाबले में बनी उमैया और बनी अब्बास इस बात की, इस नज़रिए की सख्ती से मुखालफत करते थे ताकि इस तरह अलवियों के एहतराम को कम कर सकें। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़र्जंदे रसूल की हैसियत से पहचाना जाना उनकी तरफ मुसलमानों की तवज्जा का सबब बन सकता था। इसी वजह से अहले बैत के दुश्मन इस बात का इनकार करने की कोशिशें करते रहे, जबकि मुसलमानों की अक्सरियत उन्हें फ़र्जंदे रसूल के तौर पर कबूल करती थी और करती है। हज़रात हसनैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदे रसूल के तौर पर पहचाने जाने की वजह से माविया सख्त गज़बनाक रहा करता था, और उसका इसरार था कि लोग उन्हें फ़र्जंदे अली के तौर पर पहचाने। हज्जाज बिन यूसुफ भी इस बारे में सख्त मौक़िफ़ रखता था। एक रिवायत है कि हारून ने इमाम मूसा एक आज़िम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि आप किस तरह कहते हैं कि आप लोग रसूल अल्लाह की ज़ुर्रियत हैं, जबकि नबी की कोई औलाद नरीना नहीं थी और आप लोग उनकी बेटी की औलाद हैं। इमाम ने उसके सामने दो दलीलें पेश करीं। पहली दलील सूरह इनाम की आयत नंबर 85, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहिम का बेटा करार देती है, और दूसरी आयत मुबाहिला की, जिसमें हज़रत हसनैन अलैहिस्सलाम को अपना अना का मिस्ताक करार दिया गया है। अब्बासियों पर इंतहाई गिरा था कि हज़रत हसनैन अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद फ़र्जंदे रसूल के तौर पर पहचाने जाएं, क्योंकि वो ख़ुद रसूल अल्लाह के चचा की औलाद थे और इस रिश्ते को अपनी खिलाफत के जायज़ होने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब हारून मदीने आया और रोज़ा रसूल की ज़्यारत को गया तो लोगों की तवज्जो हासिल करने और लोगों को रसूल के साथ अपने रिश्ते का एहसास दिलाने के लिए उसने नबी को इस तरह सलाम किया, सलाम हो आप पर चचा के बेटे, ताकि लोग जान लें कि उनका खलीफा हारून रशीद पैगम्बर का चचाजाद है। इस मौके पर इमाम मूसा एक आज़िम अलैहिस्सलाम भी वहाँ मौजूद थे और हारून के मकसद से आगाह थे। इमाम आगे बढ़े और नबी करीम को इस तरह सलाम किया, सलाम हो आप पर है बाबा जान, यानी अगर रसूल तुम्हारे चचाजाद हैं तो मेरे बाबा हैं। इमाम का सलाम सुनकर हारून तैश में आ गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया, और इमाम से मुखातिब होकर बेख्तियार कहा, या अबल हसन, ये वाकई बाइस फ़ख्र है। जो लोग हारून के साथी थे उन्हें भी इस बात का बखूबी एहसास हो गया था कि अगर हुकूमत को किसी की तरफ से कोई ख़तरा है तो इमाम मूसा एक आज़िम अलैहिस्सलाम से है। हारून के सफ़र मदीना के दौरान हुकूमती अहलकारों में से एक शख्स ये मंज़र देख रहा था कि इमाम किसी आला नस्ल के कीमती घोड़े पर सवार होने के बजाय इंतहाई सादगी के साथ एक सवारी पर सवार होकर तशरीफ़ लाए। उस शख्स ने पूछा कि ये कौन है जिनके आने पर तमाम लोग उनका एहतराम कर रहे हैं, यहाँ तक कि खलीफा के इर्द गिर्द घूमने वालों ने भी उन्हें जगह दी है। तो किसी ने उस शख्स को बताया कि इमाम मूसा एक आज़िम अलैहिस्सलाम है, यानी सबको मालूम था कि इमाम का वजूद मुबारक हुकूमत के लिए ख़तरे की अलामत है, क्योंकि आप एक ऐसे रहबर थे जो इल्म व मारफत, तक़वा व परहेज़गारी और बंदगी इलाही में इस कदर मशहूर थे कि जो लोग आपको जानते थे वो आपके इन औसाफ़ से भी बाखबर थे, और पूरे आलम इस्लाम में आपके दोस्तों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इमाम इतने शुजा थे, यानी बहादुर थे, कि किसी भी जालिम व जाबिर की शान व शौकत से मरूब नहीं होते थे। आप हारून की ज़ाहरी शान व शौकत को ख़ातिर में लाए बग़ैर बेधड़क हक बात कह देते थे। हारून समझ रहा था, जान रहा था कि तमाम तर हुकूमती ताकत के बावजूद भी लोगों के दिल इमाम मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम के साथ हैं, और इस बात से उसे सख्त तकलीफ़ थी। और वो इमाम की मानवी नफूस को ख़त्म करने के लिए कोशिशें करता रहता था। लोग अपने इस्लामी वाजिबात खुफिया तौर पर इमाम को दें, ये बात हारून के लिए हरगिज़ काबिल तहम्मुल ना थी। एक मर्तबा जब हारून ने इमाम को खाना काबा के पास देखा तो कहता है कि आप वही हैं ना जिनकी लोगों ने खुफिया बैत की है और अपना पेशवा करार दिया है। इमाम ने फरमाया, मैं लोगों के दिलों पर हुकूमत करता हूँ और तुम जिस्मों पर। आयतुल्ला सैयद अली कहते हैं कि हारून चूँकि एक इंतहाई होशियार शख्स था, लिहाजा वो खुद मक्के जाता है। मौर्रिख तबरी का ख्याल है कि बज़ाहिर तो हारून हज के लिए गया था, लेकिन उसका असल मकसद ये था कि वो मदीने जाकर इमाम को करीब से देखे। वो ये देखना चाहता था कि ये अजीम शख्सियत जिनके बारे में इतनी सारी बातें की जा रही हैं, जिनके इतने चाहने वाले मौजूद हैं, यहाँ तक कि बगदाद में भी इनसे मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं, ये कैसे इंसान हैं? क्या वाकया इनसे डरना चाहिए या नहीं? लिहाजा हारून मदीने आता है और इमाम से कई मुलाकातें करता है। आयतुल्ला सैयद अली कहते हैं कि ये मुलाकातें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। हारून ने इन मुलाकातों में वो सारे काम किए जो अपने किसी मुखालिफ शख्स को राम करने के लिए और एक हकीकी मुजाहिद को जेर करने के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी धमकी, लालच, धोखा दही वगैरह। जब हारून रशीद खलीफा बनने के बाद पहली बार मदीने आया तो उसने इमाम का एहतराम किया, और इस सिलसिले में मामून की ज़बानी एक मशहूर वाक़िया भी है। मामून कहता है कि जब हम मदीने गए और एक दफ़ा इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम सवारी पर उस महल में पहुँचे जहाँ मेरे बाबा ने क़याम कर रखा था, तो दरबान ने आकर मेरे बाबा को हारून को इत्तला दी कि एक नौजवान मिलने आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो मूसा इब्न जाफ़र हैं। बस इतना सुनना था कि मेरे बाबा अपनी जगह से उठे और कहा कि उनसे कहो तशरीफ़ ले आएं। फिर कहा कि उनको सवारी समीत आने दिया जाए, और हमें ये हुक्म दिया, मामून कह रहा है कि हमें ये हुक्म दिया कि उनका इस्तकबाल करें। जब हम इस्तकबाल के लिए गए तो देखा कि इबादत और तकवे के आसार उनकी पेशानी से झलक रहे थे, चेहरा अकदस पर नूर ही नूर था। उन्हें देखते ही हर इंसान बखूबी समझ जाता था कि ये इंतहाई परहेजगार इंसान है। और जब इमाम सवारी से उतरने लगे तो हारून ने उन्हें कसम देकर कहा कि नहीं, आप मेरी मसनद तक अपनी सवारी पर ही तशरीफ़ लाएं। चुनाचे इमाम अपनी सवारी पर ही हारून की मसनद तक पहुँचे। उसके बाद हारून इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ उनके साथ पेश आया, और जब इमाम जाने लगे तो हमसे कहा कि तुम सब इनकी सवारी की रकाब थामे रखो। अलबत्ता दिलचस्प बात यह है कि मामून इस रिवायत में ये कहता है कि मेरे बाप हारून ने सबको 5 से 10 हज़ार दीनार दिए, लेकिन इमाम को सिर्फ 200 दीनार दिए। मामून कहता है कि बाद में मैंने तन्हाई में अपने बाप हारून से पूछा कि ये जिनका आप इतना ज़्यादा एहतराम कर रहे थे वो थे कौन? तो हारून ने मुस्कुराकर कहा कि अगर सच पूछते हो तो जिस मसनद पर हम बैठे हैं ये उन्हीं की है, ये लोगों के इमाम हैं, मखलूक पर खुदा की हुज्जत हैं। मैं कहर व गलबे से लोगों का इमाम हूँ, मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम इमाम हक़ हैं, खुदा की कसम व मकाम रसूल के मुझसे और तमाम लोगों से ज़्यादा हकदार हैं। हारून ने कहा कि फिर खिलाफत उनको क्यों नहीं देते? हारून ने कहा कि अल-मुल्क अकीम, मुल्क अकीम होता है, अकीम उसे कहते हैं जिसके औलाद ना होती हो, यानी मुल्क व सल्तनत में नसब कोई फ़ायदा नहीं देता। हारून कहता है तुम मेरे बेटे हो, अगर मुझे पता चले कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ तुम्हारे दिल में फितूर आया है, मेरे ख़िलाफ़ साजिश करना चाहते हो, तो तुम्हारा भी सर कलम कर दूंगा। और जब हारून से मामून ने इमाम को कम रकम देने की वजह पूछी तो हारून ने कहा कि ये हमेशा तंग दस्त रहें, इनके पास पैसा ना हो, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा दीनार देता तो इसका मतलब ये होता कि वो इन पैसों से हाथों में तलवारें लिए बैठे हुए खुरासानियों को मेरे ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म करें और 2 लाख लोगों को लेकर मुझ पर हमला आवर हो जाएं। ये थे इमाम के बारे में हारून के ख़यालात। और जिस दौर में इमाम हारून के ख़िलाफ़ जिहाद में मशगूल थे, उस वक्त अगर आपके पास माल होता तो ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद थे जो इमाम के हमराह होकर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जंग के लिए तैयार थे। आयतुल्ला शहीद मुर्तज़ा मुताहरी कहते हैं कि इससे अंदाज़ा लगाएं कि शियों के आइम्मा का روحانی اثر رسوخ کس قدر زیادہ تھا۔ وہ نہ تلواریں اٹھاتے تھے، نہ کھلے عام تبلیغ کر سکتے تھے، لیکن ان کی عوام کے دلوں پر حکومت تھی۔ ہارون کی حکومت میں ایسے افراد موجود تھے جو امام کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ حق اور سچ ایسی حقیقت ہے جو اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتی ہے۔ آیت اللہ سید علی اپنی کتاب 250 سالہ انسان میں بیان کرتے ہیں کہ ہارون نے امام کے ساتھ اپنی ان ملاقاتوں میں جن امور پر بات کی ہے، ان امور میں سے ایک فدق کا معاملہ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے امام سے کہ آپ بنی ہاشم فدق سے محروم ہو گئے، اب میں آپ کو اسے واپس لوٹانا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ فدق کی حدود کیا ہیں۔ ہارون فدق کے نام پر دھوکہ دے رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اہل بیت کے غصب شدہ حقوں نے واپس دلانے کے بہانے لوگوں کے ذہن میں اپنے لیے اچھے تاثرات پیدا کرے۔ امام نے فرمایا اچھا، اب تم فدق ہمارے حوالے کرنا چاہتے ہو تو میں اس کی حدود بیان کرتا ہوں۔ امام نے حدود بیان کرنا شروع کی اور اس زمانے کی پوری اسلامی مملکت کو فدق کی حدود میں شامل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ فدق یہ ہے۔ یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس وقت بھی ہمارا دعویٰ صرف ایک ایسے باغ پر تھا جس میں چند ایک کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اس وقت بھی ہمارا دعویٰ صرف ایک باغ پر نہیں تھا، بلکہ مسئلہ پیغمبر اکرم کی خلافت کا تھا، مسئلہ حکومت اسلامی کی رہبری کا تھا۔ لیکن اس دور کے لوگوں کے خیال میں جو چیز ہمیں فدق سے، جو چیز ہمیں خلافت سے محروم کر سکتی تھی، وہ فدق کو ہم سے چھین لینا تھا، اس لیے ہم اس کے مقابلے میں مزاحمت کرتے تھے۔ اور آج ہماری جس چیز کو تم نے غصب کر رکھا ہے، وہ صرف باغ فدق نہیں ہے، بلکہ پوری اسلامی مملکت ہے۔ لہٰذا امام مملکت اسلامی کے حدود و عربہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ فدق ہے، اب اگر تم فدق لوٹانا چاہتے ہو، واپس کرنا چاہتے ہو، ہمارے حوالے کر دو۔ یعنی امام نے واضح الفاظ میں مملکت اسلامی کی قیادت و رہبری کا دعویٰ کیا۔ واقعہ یوں ہے کہ ہارون نے امام سے کہا کہ فدق کی سرحدیں معین فرمائیں، اور جب ہارون نے اصرار کیا اور امام نے فرمایا کہ میں فدق اس کی اصل حدود کے ساتھ ہی واپس لوں گا، تو ہارون نے کہا کہ بہت اچھا، آپ حدود معین تو کریں۔ یہ باتیں مدینہ یا بغداد میں بیٹھے ہوئے کی گئی ہیں۔ امام نے فرمایا اس کی پہلی سرحد عدن ہے، جو جزیرۃ العرب کی آخری سرحد ہے۔ روایت ہے کہ ہارون کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے کہا کہ تعجب ہے۔ امام نے فرمایا اس کی دوسری سرحد سمرقند ہے، ہارون کا چہرہ نیلا پڑ گیا۔ امام نے فرمایا اس کی تیسری سرحد افریقہ ہے، ہارون کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے تعجب سے کہا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا اس کی چوتھی سرحد ارمنستان تک پھیلے ہوئے جزائر ہیں۔ ہارون نے کہا اس طرح تو ہمارے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہتی، تو پھر آپ آئیے اور میری جگہ بیٹھ جائیے۔ امام نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں فدق کی سرحدیں معین کروں گا تو تم اسے لوٹاؤ گے نہیں۔ اس کے بعد ہارون نے امام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ایسی مجاہد شخصیت جس کا رابطہ اللہ سے ہو، جسے خدا کی ذات پر کامل بھروسہ ہو، اور پورے عالم اسلام میں اس کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہو، جو معاشرے میں حقیقی معنوں میں اسلامی حکومت قائم کرنے اور اسلامی نظام نافذ کرنے کے حوالے سے ایک منصوبہ بھی رکھتا ہو، یقیناً ایسے شخص کا وجود ہارون اپنی حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ لہٰذا ہارون اپنے سامنے سے اس خطرے کو ہٹانے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ چالاک آدمی تھا، لہٰذا اس نے ایک دم سے یہ کام انجام نہیں دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے بالواسطہ اس کام کو انجام دیا جائے، لہٰذا اس نے امام کو قید کرنے کا منصوبہ بنایا، تاکہ قید خانے میں ہی امام کے ساتھ کوئی ساز باز کر سکے، آپ کو کوئی عہدہ دے کر یا ڈرا دھمکا کر اپنے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر سکیں۔ حالانکہ یہ سب ہارون کی اپنی خام خیالی تھی، اس کی اپنی سوچ تھی۔ اور جب ہارون نے چاہا کہ اپنے بیٹوں کی ولی عہدی کا اعلان کرے، تو اطراف مملکت میں فرمان جاری کیے گئے کہ علماء و سادات، وزیر، سرداران، اشراف وغیرہ سب مکے میں حاضر ہو جائیں، اور سب لوگ دوبارہ ہارون کی بیعت کریں۔ اور ہارون نے یہ چاہا کہ اس کے بیٹوں کی ولی عہدی کی خبر تمام شہروں میں پھیل جائے، لیکن ہارون سوچتا ہے کہ اس منصوبے کے سامنے کون رکاوٹ ہے۔ जिसकी मौजूदगी खलीफा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, जिसकी इल्मी इस्तेदाद, पाकीज़ा किरदार लोगों को अपना गिरविदा बना लेता है। कौन है जिसका मजलूमाना अंदाज़ एहतजाज हारून की हुकूमत की बुनियादें हिला सकता है? ज़ाहिर है ऐसी शख्सियत इमाम ही थे। हारून इमाम से हसद करता था, डरता था कि लोग हमें छोड़कर इमाम को अपना रहनुमा ना बना लें, लिहाजा हारून मदीने आता है। याह्या बरमकी ने नकल किया कि हारून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक पे गया है और सलाम के बाद कहने लगा कि या रसूलल्लाह, मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं आपके बेटे को गिरफ़्तार करने पर मजबूर हूँ। अगर मैं ऐसा इकदाम ना करूँ तो मुल्क में बहुत बड़ा फितना खड़ा हो जाएगा। गोया वो नबी करीम के सामने भी झूठ बोल रहा था। उसके बाद हारून ने इमाम की गिरफ़्तारी के अहकामात सादिर कर दिए। इमाम मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर रहे थे, सिपाहियों ने आपको नमाज मुकम्मल करने का मौका भी नहीं दिया और नमाज के दौरान ही इमाम को ज़बरदस्ती मस्जिद से बाहर ले गए। इमाम ने उस वक्त कब्र रसूल पर हसरत भरी निगाह की और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ए नाना जान, आप पर सलाम हो, अपने असीर बेटे का सलाम कबूल फरमाइए। आपने देख लिया कि आपकी उम्मत आपकी औलाद के साथ क्या सलूक कर रही है। उस वक्त का माहौल बिल्कुल आपके ख़िलाफ़ था, कोई भी न था जो आपकी हिमायत करता, जो आपके हामी थे वो बहुत मजबूर थे, लेकिन इमाम की असीरी ज़ालिमाना निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ पुरजोर एहतजाज थी। आपने अपने कौल व फ़ेल से साबित कर दिया कि हारून और उसके बेटे गासिब हैं, मिल्लत इस्लामिया के दुश्मन हैं। हारून ने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि इमाम को मदीने में इस तरह गिरफ़्तार किया जाए कि अहले मदीना को भी पता ना चल सके कि इमाम के साथ क्या मामला हुआ है। लिहाजा मदीने में दो महमिल तैयार कर लिए गए और उनमें से एक को इराक़ और दूसरी को शाम की तरफ ले जाया गया, ताकि लोगों को ये मालूम ना हो सके कि इमाम को कहाँ ले जाया गया है। इमाम को गिरफ़्तार करके बगदाद लाया गया और वहाँ एक तवील अरसे तक क़ैद खाने में रखा गया। आयतुल्लाह सैयद अली कहते हैं कि यह एहतमाल है, हतमी नहीं, कि आपको एक मरतबा कैद से रिहा करके दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया हो, लेकिन ये बात मुसल्लिम है कि आखिरी मरतबा आपको इसी मकसद के तहत गिरफ़्तार किया गया था, ताकि क़ैद खाने में ही आपको शहीद कर दिया जाए, और फिर ऐसा ही किया गया। इमाम की हयात तैयबा का एक हिस्सा रूपोशी में गुज़रा, यानी लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं था कि इमाम कहाँ है। इस दौरान खलीफा लोगों को बुलाकर उनसे पूछता रहता, क्या तुमने मूसा इब्ने जाफ़र को देखा है? लोग कहते, हमने नहीं देखा। यहाँ तक कि हज़रत अपनी रूपोशी के दौरान शाम के देहातों में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। यानी रिवायात में है कि एक मुद्दत तक इमाम मदीने में मौजूद ही नहीं रहे, बल्कि शाम के देहातों में हुकूमती जासूस आपका पीछा कर रहे थे और इमाम अपना लिबास बदल कर अजनबी शख्स के भेस में एक देहात से दूसरे देहात चले जाते। चलते चलते आखिर एक गार में पहुँचते हैं जहाँ एक नसरानी भी मौजूद था। हज़रत उस शख्स के साथ इस्लाम की हक्कानियत के बारे में मनाज़रा करते हैं, यानी इस हाल में भी आप इलाही फरीज़े की अंजाम दही यानी हकीकत बयान करने से गाफिल नहीं। उस नसरानी के साथ मुबाहसा करके उसे मुसलमान बनाते हैं। अंदाज़ा कीजिए कि ऐसा शख्स कि जो सिर्फ़ दीनी अहकाम और इस्लामी मारिफ बयान करता हो और हुकूमती मामलात से अगर कोई सरोकार ना रखता हो, तो वो कभी ऐसी मुश्किलात का शिकार नहीं हो सकता जिन मुश्किलात का शिकार इमाम थे। आयतुल्लाह सैयद अली का ये सब बयान है और वो ये भी कहते हैं कि आज हम यहाँ बैठकर ये सोचते हैं कि इमाम एक खामोश और गैर जानिबदार शख्स थे, जो मदीने में खामोशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। हुकूमती अहलकारों ने ऐसे ही आपको गिरफ़्तार करके क़ैद किया और बाद में जहर दे के शहीद कर दिया। वो कहते हैं कि जबकि हकीकत में ऐसा नहीं, बल्कि इसके पीछे एक तवील जद्दोजहद और तंजीमी उमूर कार फरमा थे। ये एक ऐसी जंग का नतीजा है जिसमें इमाम पूरे आलम इस्लाम में मौजूद अपने बहुत सारे पैरोकारों के साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ मशगूल अमल थे। यही वजह है कि इमाम का वो नाफरमान भतीजा जो दरबार खिलाफत से वाबस्ता था, हारून से इमाम के बारे में बात करते हुए यूँ कहता है कि तुम ये ख्याल ना करना कि इस्लामी सल्तनत पर सिर्फ तुम ही खलीफा हो और लोग सिर्फ तुम्हें खराज देते हैं। इस वक्त आलम इस्लाम में दो खलीफा हैं, एक तुम और दूसरे मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। जिस तरह लोग तुम्हें खराज देते हैं, ऐसे ही उन्हें भी देते हैं। अगरचे कि वो ये सब बातें इमाम के ख़िलाफ़ हारून को भड़काने के लिए कर रहा था, लेकिन ये अपनी जगह हकीकत भी थी कि पूरे आलम इस्लाम में ऐसे लोग मौजूद थे जिनके इमाम से ताल्लुकात थे, लेकिन वो इस हद तक नहीं थे कि इमाम खुल्लम खुल्ला कोई मुसल्लहाना जिहाद कर सकते। आइम्मा अलैहिस्सलाम में से किसी इमाम ने जालिम हुकूमत के साथ समझौता नहीं किया और ना ही खामोश रहे। हालात और वाकयात के फ़र्क के बाइस मौका महल की मुनासबत के साथ जिहाद में भी फ़र्क था, किसी वक्त तलवार उठाना पड़ी और कभी बग़ैर तलवार के जिहाद किया। जालिमों के मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहे और जब हुकुमरानों से मुलाकात होती तो उनके सामने उन्हें टोक भी देते थे, मज़लूमों की हिमायत और मदद करते रहे। कभी तारीख़ में ये नहीं मिलेगा कि आइम्मा में से किसी ने भी हुकुमरान की हिमायत की हो। इमाम इस्तकामत का पैकर थे। इमाम को बरसों कैद बामुशक्क़त में इंतहाई तकलीफ़ में रखा गया और जहर देकर शहीद कर दिया गया। इसकी वजह यह है कि आप पर बेपनाह मजालिम ढाने के बाद भी वो हुक्मरान, वो जालिम खुलाफा इमाम को अपने साथ मिलाने में कामयाब ना हो सके। हारून अपने जासूसों के ज़रिए इस कोशिश में था कि इमाम पर कोई सियासी या मजहबी जुर्म आयद करके उनको सज़ा दे सके। इमाम के ज़िंदान में आखिरी अय्याम थे। शहादत से कुछ दिन पहले की बात है कि हारून ने याहया को इमाम के पास भेजा और इंतहाई नरम लहजे के साथ उससे कहा कि मेरी तरफ़ से मेरे चचाजात भाई को सलाम कहना और कहना कि हम पर साबित हो चुका है कि आप बेकसूर हैं, लेकिन अफसोस मैंने कसम उठा रखी है, उसको तोड़ नहीं सकता। मेरी कसम यह है कि जब तक आप अपने गुनाह का एतराफ़ नहीं करें, मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, मैं आपको आज़ाद नहीं करूँगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप सिर्फ़ याहिया के सामने एतराफ़ जुर्म कर लें, सिर्फ़ इतना कह दें गलती की है, माफ़ी चाहता हूँ, तो मैं आपको आज़ाद कर दूँगा। जब ये पैगाम हारून ने याहिया के ज़रिए इमाम तक भिजवाया तो इमाम ने याहिया को जवाब दिया, इस ज़िंदगी से मौत बेहतर है और हमारी ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो चुके हैं। आयतुल्ला मुताहरी कहते हैं कि इस्तकामत के बुलंद मीनार शफी रोज़ जज़ा हैं। ये अपने ईमान और नज़रिए की पुख्तगी की वजह से शहीद किए गए। अगर ये आइम्मा अपने मौक़िफ़ को बदल देते और हुक्काम वक्त की हाँ में हाँ मिलाते तो हर तरह आराम और सुकून हासिल कर सकते थे, लेकिन जिस तरह रात और दिन जमा नहीं हो सकते, इसी तरह हक और बातिल एक जगह जमा नहीं हो सकते। भला कैसे मुमकिन था कि इमाम गलत बात पर समझौता कर लेते। एक मर्तबा और हारून ने एक शख्स को इमाम के पास पैगाम देकर भेजा। वो शख्स कहता है कि मैं कैद खाने गया तो देखा इमाम नमाज में मशगूल हैं, उनकी हैबत ने मुझे बैठने ना दिया, लिहाजा मैं मजबूरन तलवार पर टेक लगाकर खड़ा रहा। मैंने देखा कि आप मुस्तकिल नमाज में मशगूल हैं और मेरी तरफ़ कोई तवज्जो ही नहीं कर रहे। हर दो रकत नमाज का सलाम फेरते ही बिला फासला दूसरी नमाज के लिए तकबीर कहते हैं और नमाज शुरू कर देते हैं। जब काफ़ी देर हो गई और मुझे डर हुआ कि हारून पूछेगा मुझसे और उसे बदगुमानी पैदा ना हो जाए, तो जब इमाम सलाम फेरने लगे मैंने गुफ्तगू शुरू कर दी तो हज़रत ने उस वक्त नमाज़ शुरू नहीं की बल्कि मेरी बात सुनने लगे और मैंने हारून का पैगाम इमाम को पहुंचाया। और वो पैगाम कुछ इस तरह से था, इसका ख़ुलासा ये था कि हारून ने मुझसे कहा है कि हज़रत से ये ना कहना कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, बल्कि हज़रत से ये कहना कि मुझे आपके भाई ने आपकी तरफ़ भेजा है और उसने आपको सलाम भेजा है और वो कहता है कि मुझे आपकी तरफ़ से कुछ चीज़ें मालूम हुई जिनकी वजह से मैं परेशान हो गया था, इसीलिए आपको मदीने से यहाँ बुला लिया और जब तहकीक की तो आपके दामन को हर ऐप से पाक पाया, हर ऐप से पाक देखा और मैं समझ गया कि जो कुछ आपके मुताल्लिक मुझसे कहा गया था वो सब झूठ था। मैंने गौर व फिक्र किया कि आपको आपके घर की तरफ़ भेज दूँ या आप मेरे पास रहें, तो मैंने देखा कि आपका मेरे पास रहना मेरे सीने को आपकी अदावत से बेहतर तौर पर खाली रख सकता है और आपकी बदगोई करने वालों के झूठ को ज़्यादा जाहिर कर सकता है, लिहाजा मैंने आपका यहाँ रहना मुनासिब समझा। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि हारून की तरफ से मुझे हुक्म मिला है कि आपके लिए बेहतरीन बावर्ची आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि आप हसबे ख्वाहिश अपना खाना तैयार करवा सकें। ये सारा पैगाम हारून की तरफ से इमाम को पहुंचाया गया। रावी कहता है कि इमाम ने मेरी तरफ़ तवज्जो किए बग़ैर दो जुमलों में जवाब दिया, फरमाया मेरा माल मेरे पास मौजूद नहीं जो मुझे फ़ायदा दे, यानी जो चाहूँ हुक्म दूँ और मेरे लिए हाजिर कर दिया जाए, और ख़ुदा ने मुझे सवाल करने वाला पैदा नहीं किया। अल्लाह अकबर, امام نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور نماز شروع کر دی۔ امام نے ثابت کر دیا کہ قید اور بند ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ امام قید میں ہو کر بھی آزاد ہیں، اور با اقتدار خلیفہ امام کے سامنے اتنا مجبور اور بے بس ہے کہ خوش آمدانہ انداز اختیار کر رہا ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ خلیفہ ہر طریقے سے آئمہ پر زور دیتے رہے، لیکن آئمہ کے حسن تدبر کا کیا کہنا۔ دنیا کے طاقتور ترین حکمران آئمہ کی استقامت کے مقابلے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھے۔ وہ آئمہ کے وجود اقدس کو اس لیے برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کا وجود مبارک ہی ظالموں کے لیے موت تھا۔ اس لیے یہ ظالم حکمران خلفاء کبھی تلوار کبھی زہر سے اللہ کی ان خاص نشانیوں کو مٹانے کی کوششیں کرتے تھے۔ حق کی سچائی اور فتح یہ ہے کہ وہ ظالم قید کر کے بھی آرام سے نہیں رہ سکتے تھے، اور یہ قید میں بھی آزاد تھے۔ آیت اللہ سید علی کہتے ہیں کہ حکمران امام کو ڈرانے دھمکانے لالچ کے ذریعے اپنا فرمانبردار بنانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن آپ خوف الہی، لطف الہی اور اپنے پروردگار کی ذات پر بھروسے کے ذریعے حکمرانوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ آپ کی ثابت قدمی کی وجہ سے ہی آج دین اسلام اور قرآن محفوظ ہیں۔